ये आकाशवाणी है। अब आप करिश्मा राय से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की सफल यात्रा के बाद 3 दिन की राजकीय यात्रा के लिए गयाना रवाना हो गए हैं। 1968 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की गयाना की यह पहली यात्रा है। श्री मोदी जॉर्ज टाउन में गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री दूसरे कैरिकॉम भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और इस क्षेत्र के साथ भारत की दीर्घकालिक मैत्री बढ़ाने के लिए कैरिकॉम सदस्य देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बुधवार को प्रधानमंत्री गयाना की संसद को संबोधित करेंगे। वे प्रवासी भारतीयों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्राजील के रियो डी जनेरो में सतत विकास और ऊर्जा परिवर्तन पर G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र में भाग लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सभी के लिए स्वच्छ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के प्रयासों में तेजी लाने के महत्व को रेखांकित किया है। वाराणसी के लाइफ सिद्धांतों को मुख्य धारा में लाने पर जोर देने के साथ साथ श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी पहल का भी उल्लेख किया। G20 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री मोदी ने कल ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, जैव ईंधन, रक्षा और कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में सहयोग सुधार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सूत्रों ने बताया कि बैठक के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति ने श्री मोदी से कहा कि उनके देश ने भारत के G20 की अध्यक्षता से प्रेरणा लेते हुए कई कदम उठाने के प्रयास किए हैं। प्रधानमंत्री ने चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ भी द्विपक्षीय वार्ताएं की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि चिली के साथ बातचीत औषधि, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों में संबंध मजबूत बनाने पर केंद्रित रही। वहीं अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से ऊर्जा, रक्षा उत्पादन, व्यापार और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीजी के साथ द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। दोनों नेताओं ने भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान बनी सहमति के अनुरूप नवीनीकरण ऊर्जा साझेदारी आरंभ किए जाने का स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने G20 शिखर सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता का गैवल सौंपा। इसके साथ ही 19वां G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया। झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण में 38 विधानसभा सीटों और महाराष्ट्र में एक ही चरण में 288 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जाएंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि झारखंड के नक्सल प्रभावित 31 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा कारणों से मतदान शाम 4 बजे समाप्त हो जाएगा। इसी बीच झारखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी के रवि कुमार ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि राज्य के 1,04,027 मतदान केंद्रों पर 5,00,000 चुनावकर्मी तैनात किए गए हैं। 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इनमें उत्तर प्रदेश की 9, पंजाब की 4, केरल और उत्तराखंड की 1-1 सीट के साथ महाराष्ट्र की नांदेड़ संसदीय सीट शामिल है। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता सुप्रिया सुले पर बिटकॉइन के अवैध व्यापार में संभावित तौर पर संलिप्त होने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में कल रात पार्टी प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव को प्रभावित करने के लिए बिटकॉइन भुनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने इससे संबंधित श्री पटोले और सुश्री सुले की कथित आवाज भी सुनाई। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में 50वीं विश्व वरीयता प्राप्त भारत की अनुपमा उपाध्याय ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। शेंजेन में खेले जा रहे इस मैच में उन्होंने 15वीं विश्व वरीयता प्राप्त चीन की